प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, हम सब लोग आध्यात्म जीवन की चर्चा कर रहे हैं। इस संबंध में आज इस विषय पर हम विचार करें कि जो सत्य है वह अपने से बहुत दूर मालूम होता है और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है वह अपने को निकट मालूम होता है। जिससे हमारा त्रिकाल में भी नित्य संबंध नहीं है वह अपने को प्राप्त हुआ जैसा प्रतीत होता है, और जो सदा सदा से अपने में विद्यमान है, जिससे संबंध कभी छूटा ही नहीं, वह अपने को अत्यंत रहस्यमय मालूम होता है। एक समस्या है हमारे आपके सामने। इस समस्या का समाधान सत्संग के प्रकाश में हम लोगों को करना है। अहम रूपी अणु की रचना पर विचार करना बहुत ही सहायक होता है। शरीरों की रचना हुई है भौतिक तत्वों से और मैंपन की रचना हुई है अलौकिक तत्वों से। श्री महाराज जी की वाणी है, एक जगह पर बातचीत के सिलसिले में कहा उन्होंने कि गेहूं उपजा खेत में और सिवार उपजी जल में। मैं कहां उपजा, बताओ कोई स्थान, जल में कि थल में, कहां पर मैं की उत्पत्ति हुई। सोचने से तो ऐसा लगता है कि जल में से या थल में से मैं नहीं निकला। श्री महाराज जी कहते कि जल से, थल से और वायु से मैं की रचना हुई होती अगर, तो आज के वैज्ञानिक युग में ऐसे यंत्र बना लिए जाते जिनसे बहुत से मैं का उत्पादन हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमारा आपका व्यक्तित्व जो है उसमें शरीरों का भाग भौतिक तत्वों से बना हुआ है और मैंपन जो है वह अलौकिक तत्व से रचा गया है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि शरीरों के साथ रहते हुए भी मनुष्य के भीतर अलौकिक जीवन की मांग होती है, अनंत तत्व की जिज्ञासा रहती है। इसलिए यह मैंपन जो है हमारा आपका, यह भौतिक तत्वों का रचा हुआ नहीं है, अलौकिक तत्वों से रचा हुआ है। हम लोग देख रहे हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, यह सब इसी सत्य के प्रकाश में होना चाहिए था। इस सत्य का प्रभाव अगर हम लोग ग्रहण करें तो हमें यह सत्य भी मान लेना चाहिए कि भाई शरीर की आवश्यकता संसार से पूरी होगी, परंतु मैं की आवश्यकता की पूर्ति में संसार सहायक नहीं हो सकता। कारण कि शरीर और संसार की जाति एकता है। किसी शरीर विज्ञान के जानकार व्यक्ति से आप पूछिए और आपके शरीर के भीतर की धातुओं की वह जांच करे, तो कोई डॉक्टर कहेगा कि शरीर में लोहा कम हो गया, कोई कहेगा कि इसमें शक्कर की मात्रा बढ़ गई। ये सब धातुएं जो शरीर के भीतर हैं और जिनकी क्षति वृद्धि की चर्चा आप करते हैं, ये धातुएं संसार की हैं, संसार के बाहर की नहीं है। इसका मतलब यह है कि शरीर का विश्लेषण अगर कीजिए तो शरीर में संसार ही मिलेगा, संसार के परे का धातु नहीं मिलेगा। समझ में आता है जी? अब मैं का विश्लेषण करो कि उसमें क्या है, उसमें संसार की धातु नहीं मिलेगी। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये पांच तत्व मैं में नहीं मिलेंगे। मैं क्या है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इस पर जिन महापुरुषों ने विचार किया उन्होंने विचार की सीमा के भीतर आने वाली सब बातों को अस्वीकार किया। मैं मिट्टी नहीं है, मैं पानी नहीं है, मैं हवा नहीं है, मैं अग्नि नहीं है, मैं पृथ्वी नहीं है, इस तरह सब धातुओं को इनकार कर दिया कि मैं में यह सब नहीं है। जो नहीं है उसको नकार देने से, अर्थात जो नहीं है उसको अस्वीकार कर देने से जो है उसका अनुभव हो जाता है, उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है और समस्या हल हो जाती है। एक रास्ता यह है। दूसरा है विश्वास का मार्ग, जो आस्तिकवाद कहलाता है। व्यक्तित्व की रचना में विचार भी एक अनिवार्य तत्व है, तो आस्था, श्रद्धा, विश्वास भी जीवन का एक अनिवार्य पहलू है। उसको भी हटाया या मिटाया नहीं जा सकता। किसी मनुष्य के व्यक्तित्व को लेकर आप विचार करें तो उसमें आस्था, श्रद्धा, विश्वास ये सब घटा दीजिए तो उसको आप मनुष्य नहीं कह सकेंगे। अनिवार्य तत्व किसको कहते हैं? जिसको हटा दो तो संज्ञा समाप्त हो जाए। अब सोचिए, प्रेम भाव से शून्य आपने किसी मनुष्य को देखा है? अरे भाई, स्नेह देने की क्षमता उसमें न हो परंतु लेने की प्यास तो रहती है। इसका मतलब है कि बीज रूप से यह तत्व विद्यमान है। एक मनुष्य के व्यक्तित्व का एक अनिवार्य तत्व है कि उसमें आस्था, श्रद्धा, विश्वास का पक्ष होता ही है। उसके बिना मनुष्य बनता ही नहीं है। इस आधार पर साधन की एक प्रणाली चलती है जिसमें यह माना जाता है कि शरीर के माध्यम से और इस संसार की सहायता से अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। अपनी आवश्यकता उस अनंत जीवन की है जिस पर मृत्यु की छाया न पड़ सके। अपनी आवश्यकता उस आनंद की है जो किसी अन्य पर आश्रित न हो। पराश्रय और परिश्रम से मिलने वाली चीज सुख कहलाता है, आनंद नहीं कहलाता। पराश्रय और परिश्रम से मिलने वाले सुखों का सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। इतने से अपने को संतुष्टि नहीं हुई। अपनी मांग उस आनंद की है जो पराश्रय और परिश्रम पर आधारित न हो। आंखों का सहारा लिए बिना दृश्य जगत के सुंदर दृश्य की सुंदरता का मजा आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते। कान की सहायता लिए बिना मधुर स्वर सुनने का सुख किसी को मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो कानों का सहारा लेकर मधुर स्वर सुनने का सुख हम लेते ही रहेंगे, इस बात में हम लोग स्वाधीन नहीं हैं। जीभ में स्वाद की कलियां हैं, उसमें से स्वाद के रस निकलते रहते हैं, सलिवरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। उनकी क्रिया के आधार पर सुस्वादु वस्तुओं के खाने का सुख व्यक्ति को मिलता है। यह सुख आप सदा के लिए लेते रहें, इसमें स्वाधीनता नहीं है। अनेक प्रकार की पराधीनता है, कहां तक मैं वर्णन करूं। शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान के आधार पर इन्हें जानने में मैंने बहुत समय गंवाया। आपका समय इस विवेचन में मैं गंवाना नहीं चाहती हूं। अब इसे यहीं पर छोड़ दीजिए। इसमें पराधीनता है, इतनी बात स्पष्ट हो गई। अब आगे बढ़ें। अपनी मांग में ऐसी बात है कि अपने को वह आनंद चाहिए जिसमें कि शरीर और संसार की पराधीनता लेनी न पड़े। परम स्वाधीन जीवन का आनंद अपने को चाहिए। इस मांग की पूर्ति शरीर और संसार की सहायता से नहीं हो सकती। अपने को ऐसा परम पवित्र प्रेम का रस चाहिए कि जो कभी घटे ही नहीं, कभी खत्म ही न हो और हम सदा ही उस रस की मस्ती में छके रहें। ऐसा परम पवित्र रस, ऐसा अनंत माधुर्य से भरा हुआ रस इस संसार में है भी नहीं और इस संसार की सहायता से ऐसे रस का अनुभव भी नहीं हो सकता। जिन साधकों को उस रस का मजा आया, जो उस रस में छके, वे शरीर और संसार को भूल गए, और जिन्होंने शरीर और संसार को पकड़कर रखा है, उनको वह अनंत रस मिला ही नहीं। इससे पता चलता है कि अपने को जो चाहिए वह शरीर और संसार की सहायता से नहीं मिल सकता। अपने जीवन को देखिए तो सही, शरीर और संसार की सहायता लेकर हम लोगों में से किसी ने 40 वर्ष, किसी ने 60 वर्ष और किसी ने 80 वर्ष बिताए। इतनी लंबी अवधि का अनुभव काफी है इस सत्य को स्वीकार करने के लिए कि सचमुच मुझे जिसकी मांग है वह शरीर और संसार की सहायता से पूरी नहीं हो सकती। अतः निज स्वरूप का बोध और परम प्रेम का रस जगत की सहायता से नहीं मिल सकता। इस सत्य की स्वीकृति मात्र से साधकों के साधन पथ की बहुत सी बाधाएं सहज ही हट जाती हैं। साधक प्रचलित रूढ़ियों से मुक्त हो जाता है, अन्यथा अपनी मौलिक मांग की पूर्ति के लिए भी वह शरीरों की पराधीनता में आबद्ध रह जाता है। साधकों को साधन पथ पर स्वाधीनता पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए श्री स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, सत्य को स्वीकार करने के लिए किसी विशेष परिश्रम और पराश्रय की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः साधक यह सोचते हैं कि शरीर की ममता और संसार की कामनाओं का नाश करने के लिए भी कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, कुछ अनुष्ठान करना पड़ेगा। ऐसा सोचना भ्रम है। ममता और कामना का नाश जीवन के सत्य को स्वीकार करने से होता है, परिश्रम से नहीं। ममता और कामना की उत्पत्ति सुख भोग की प्रवृत्ति से होती है, परंतु उनका नाश किसी प्रवृत्ति से नहीं होती है। कामनाओं की उत्पत्ति का वैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। मनोविज्ञान का सिद्धांत है कि आपने इंद्रिय दृष्टि से दृश्य जगत को देखा और किसी चीज को पसंद किया कि यह बड़ी बढ़िया है। उस पसंदगी के कारण उसका चित्र आप में अंकित हो गया। जैसे खाने की कोई चीज पसंद की आपने, दुकानों में से बढ़िया बढ़िया सुगंधी आ रही है, खाने की वस्तु पक रही है, बिक रही है, आपके मन में उसको खाने की कामना उत्पन्न हो गई। उसको खाने का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह तो प्रकृति का विधान जाने। मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। कभी पैसे नहीं होंगे, कभी टाइम नहीं होगा, कभी साथी ना पसंद करेंगे। सुख लेने के लिए विधान ने आपको अलाउ किया है या नहीं, यह तो विधान जाने। लेकिन अगर आपने पसंद किया कि यह तो बड़ी बढ़िया चीज है, मुझे मिल जाए तो खाने में बड़ा मजा आएगा, केवल इस पसंदगी के आधार पर आप में उसका राग अंकित हो गया। फिर जब आप ध्यान करने बैठे तो इष्ट के स्थान पर जिस वस्तु को आपने पसंद किया था उसका चित्र दिखाई देने लगा। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। बहुत साधारण स्तर का वैज्ञानिक विश्लेषण है, ऊंचा दर्शन मैं नहीं बोल रही हूँ। दुनिया में रहकर दिन रात इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं को हम लोग अपने भीतर स्थान दे रहे हैं, यह उसका परिणाम है। श्री महाराज जी कहते हैं कि भैया, सुखद प्रवृत्तियों में अपने को फंसाकर इन विकारों को आपने भीतर भीतर जमाया है, इनका नाश किसी प्रवृत्ति से नहीं होगा। ये विकार भी तुम्हारे भीतर जमे रहेंगे और इनके नाश के लिए साधना के रूप में कोई चित्र लेकर, कोई मंत्र लेकर, कोई अच्छा विचार लेकर उनका चिंतन करने बैठोगे तो वह चिंतन भी तुम्हारे भीतर अंकित होता रहेगा। दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रभाव अंकित रहेगा। मनुष्य में बड़ी भारी विलक्षणता है कि वह जिसको पसंद करता है वही उसके भीतर अंकित होता है। संसार के दृश्यों को पसंद किया तो उनका चित्र भी भीतर बन गया, और अब कुछ अच्छी बातों को पसंद करने लगे तो वे भी अंकित हो गईं। फिर जब साधक अपनी साधना में शांत बैठना चाहते हैं तो जो विकार अंकित हुए थे वे भी सामने आते हैं, और जो अच्छी बातें अंकित हुई हैं वे भी सामने आती हैं। फिर साधक घबराते हैं कि हाय क्या करें, भीतर से विकार तो नाश हुए ही नहीं। अरे भाई, आपने दोनों को पसंद किया तो दोनों वहां मौजूद हैं। एक को रखना चाहते हो और दूसरे को हटाना चाहते हो तो होगा कैसे? पहले पसंदगी मिटाओ, तब न विकार मिटेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, भीतर के जो विकार हैं उनको नाश करने के लिए किसी क्रिया का सहारा मत लो। क्रिया का सहारा लेने का मतलब है शरीर का सहारा लेना, और शरीर का सहारा लेने का मतलब है कि फिर तुम पराधीन हो गए। सोचो, तुम चाहते हो परम स्वाधीन परमानंद, और उसकी साधना करते हो शरीरों के अधीन होकर, इसी कारण सफलता नहीं मिलती। इस फेर में कभी मत पड़ना। कितनी सच्ची बात है, आप देखिए। जब मैं साधक समाज को देखती हूं कि शरीरों का सहारा लेकर विविध प्रकार की क्रियाओं को लेकर शरीरों से परे और शरीरी जीवन की स्वाधीनता पसंद करते हैं तो बड़ा दुख होता है। शरीर का सहारा लेकर साधन करोगे और शरीरी जीवन चाहोगे, कैसे होगा? होता ही नहीं है। बाहर का दुख द्वंद थोड़ा कम हो जाता है, समाज में कुछ अच्छा स्थान मिल जाता है, लोग कुछ भली दृष्टि से देखने लगते हैं, जीवन में से बहुत सी बुराइयां निकल जाती हैं, तो व्यक्तित्व कुछ अच्छा बन जाता है। लेकिन जो अंतिम बात है वह पूरी नहीं होती। इसीलिए श्री महाराज जी ने कहा कि केवल सत्य की स्वीकृति मात्र से अहम में परिवर्तन होता है। इसको आप प्रयोग करके देखें, सत्य की स्वीकृति मात्र से। कौन सा सत्य? ग्रंथ में लिखा है वह नहीं, गीता में लिखा है वह नहीं, वेद शास्त्र में लिखा है वह नहीं, उसके तो हम अभी अधिकारी भी नहीं हुए हैं। फिर कौन सा सत्य? शरीरों की सहायता लेकर जगत में हमने अपने को संतुष्ट करना पसंद किया। मेरा ही अनुभव है कि ऊंची से ऊंची सुखद परिस्थिति में भी मुझे संतोष नहीं हुआ। यह आपकी अपनी जानी हुई बात है। यह ग्रंथ का सत्य है कि आपका अनुभव है? आपका अनुभव है। जो अपने अनुभव का आदर करता है वह वेदवाणी का आदर कर सकता है, क्योंकि आपके भीतर प्रकाश देने वाला स्वयं प्रकाश विद्यमान है। उसी का प्रकाश वेद में प्रकट किया गया है। वेद में जो प्रकाश प्रकाशित किया गया है, गीता रामायण उपनिषद में जो प्रकाश प्रकाशित किया गया है, उस प्रकाश का मूल स्रोत स्वयं प्रकाश्य परमात्मा आप में विद्यमान है। आपके व्यक्तित्व में जो कि सजीव है, उस प्रकाश का आदर होता है। अनुभूतियां कागज के पन्नों में नहीं होती हैं, मनुष्य के व्यक्तित्व में होती हैं। अतः कागज के पृष्ठों से अधिक महत्वपूर्ण आपका व्यक्तित्व हुआ। इस बात को आप मानिए, अपने व्यक्तित्व के महत्व को स्वीकार करिए। ग्रंथ में जो वाक्य लिखे हैं उन वाक्यों का अनुसरण करने से सत्य की अभिव्यक्ति आपके भीतर होगी। आपके अनुभव में आएगा और वह कभी न मिटने वाला आनंद आपके जीवन में आएगा, इसमें कभी संदेह मत करना। संत कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पास शरीर है और तुम्हारे परिपार्श्व में संसार दिखता है। उस शरीर और उस संसार को आज तक तुम पकड़कर रख नहीं सके, लेकिन भूल से तुमने मरे हुए कुटुंबियों की ममता को अपने अंदर रख लिया। कुटुंबी चले गए और उनकी ममता तुम्हारे भीतर रह गई, उनकी आसक्ति तुम्हारे भीतर रह गई। सरकार का दिया हुआ बड़ा भारी पद मिला था, सरकार ने उसे वापस ले लिया, पद चला गया, लेकिन उस पद के अभिमान की बू अपने भीतर है। जब बातचीत होती है तब रिटायर्ड व्यक्ति अपना परिचय देते हैं कि पहले हम अमुक पोस्ट पर काम करते थे। सिरसों जी महाराज कभी आनंद की मौज में होते तो ऐसे ही पुकारते, आओ राय बहादुर साहब, आओ मजिस्ट्रेट साहब, आओ जज साहब, ऐसे करके संबोधित करते। और फिर उसके बाद खूब हंसते और कहते कि देखो भाई, अगर तुम्हारे भीतर पद की आसक्ति रह गई है थोड़ी बहुत, तो मैं इसी पद के संबोधन से पुकार रहा हूं, अब से राग निवृत्त हो जाओ। संसार आज तक किसी की पकड़ में नहीं आया, परंतु संसार की आसक्ति अपने भीतर रखकर व्यक्ति फंस जाता है। संसार सदा ही छूटा हुआ है, फिर हम किसमें फंस गए हैं? संसार में नहीं फंस गए। हवा किसी को नहीं पकड़ती है, धरती किसी को नहीं पकड़ती है, समाज किसी को नहीं पकड़ता है, संसार कभी किसी को नहीं पकड़ता है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व तो है ही नहीं, उसमें कर्तापन है ही नहीं। मैंने अपनी भूल से अपने भीतर संसार की ममता कामना को रख लिया तो मैं स्वयं फंस गई हूं। अब प्रियजनों का वियोग सता रहा है, अब सुख सुविधाओं का निकल जाना सता रहा है, यह सब हो रहा है। यह तो हो गई बीमारी की बात, इसको अब छोड़ दिया जाए। इसका इलाज यह है कि संसार की ममता और कामना का त्याग कर दिया जाए। जिसको जीवन में ऐसा अचल आधार चाहिए कि जिसका आश्रय लेकर व्यक्ति सदा सदा के लिए निश्चिंत और निर्भय हो सके, उसको आस्था श्रद्धा विश्वास के आधार पर इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि परमात्मा है, सदा के लिए है, सभी के लिए है, अपने में है, अभी है और अपना है। परमात्मा है एक बात हो गई, सदा के लिए है, सर्वत्र है, सभी के लिए है, अपना है, अपने में है, अभी है। हर वाक्य का बड़ा भारी अर्थ है, लेकिन उसकी व्याख्या किसी दूसरी बैठक में होगी। अभी तो केवल उस पथ का प्रतिपादन करना है मुझे। विश्वास पथ के साधकों के लिए भी बहुत ही सहज बात है कि वे अपने जीवन की आवश्यकता को देखकर संतों, भक्तों और सद्ग्रंथों के वाक्यों में विश्वास करके उस परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लें। इस तरह से दो भाग हो जाएंगे, एक यह कि शरीर संसार के काम आ जाएगा और दूसरा यह कि स्वयं मैं परमात्मा के प्रेम के रूप में बदल जाएगा। इस प्रकार बहुत ही सहज से जो नहीं है उसका प्रभाव अपने में से निकल जाता है, और जो सदा सदा से अपने में विद्यमान है उसकी सरसता, उसकी मधुरता अपने में भर जाती है। जो संसार का है वह संसार में जुट जाएगा, और जो परमात्मा का है वह परमात्मा से अभिन्न हो जाएगा। लौकिक आनंद भी हो गया और पारलौकिक आनंद भी हो गया। शरीर को जो चाहिए वह शरीर को मिल गया और अपने को जो चाहिए वह अपने को मिल गया। देखो अपने को क्या चाहिए, अपने को परम प्रेम की मधुरता चाहिए, अपने को अनंत रस चाहिए। जो अपने हृदय में परम प्रेम की आवश्यकता अनुभव करते हैं वे रस के लिए संसार की ओर नहीं देखते हैं। इस बात को स्वीकार करने के लिए गुफा में नहीं प्रविष्ट होना होगा, जमीन में नहीं घुसना होगा, आकाश में नहीं उड़ना होगा। अभी यहीं बैठे बैठे आप इस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं। सत्य जो होता है वह जगत के अधीन नहीं होता। बड़ा भारी भ्रम है कि जब सत्य की याद आती है तो आदमी सोचने लगता है कि अब हिसाब बंद करो, अब दुकान बंद करो, परिवार से छुट्टी मांगो। सत्य का जो प्रश्न है उसमें मनुष्य को पराधीन नहीं बनाया गया, उसके लिए किसी परिस्थिति विशेष की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, परंतु लोगों को भ्रम रहता है। आप कैसे सोचते हैं कि भूखे रहने की ताकत आएगी तब सत्य खोजेंगे, नंगे रहने की शक्ति होगी तब सत्य खोजेंगे? भूखा नंगा रहना शरीर धर्म है, स्वधर्म नहीं है। शरीर धर्म में सत्य बंधा नहीं है। सत्य किसे मिलना चाहिए? शरीर निरोग हो तो उसको मिलना चाहिए और बीमार हो तो उसको भी मिलना चाहिए। जिसके पास धन संपत्ति हो उसको भी मिलना चाहिए और जिसके पास धन नहीं हो तो उसको भी मिलना चाहिए। आप सोचिए तो सही, जगत में विषमता हो सकती है लेकिन सत्य के साम्राज्य में विषमता कैसे हो सकती है? इस प्रकार ये दो बातें आई सामने और आपके अनुभव के आधार पर आई। शरीर को हम संसार के बाहर नहीं ले जा सकते, इसके द्वारा संसार की जो सेवा बन सके सो करते रहो। जब तक शरीर मिटकर संसार में समा न जाए तब तक करते रहो। लेकिन अपनी जरूरत है और शरीरी आनंद की, परम स्वाधीनता के आनंद की, परम प्रेम के रस की। शरीर की जरूरत ज्यादा नहीं है, अपने भीतर संग्रह के दोष ने शरीर की जरूरतों को इतना भारी भरकम बना दिया कि अपने लिए फुर्सत ही नहीं है। शांति मेरी अपनी मांग है, स्वाधीनता का आनंद मेरी अपनी मांग है, परमात्मा का प्यार मेरी अपनी मांग है, लेकिन मांग पूरी करने के लिए फुर्सत ही नहीं है। यह अपनी भूल आपकी दृष्टि में आ रही है कि नहीं? इसको इसी जगह पर बैठे बैठे मिटा सकते हैं कि नहीं? मिटा सकते हैं। जीवन बड़ा आसान हो जाएगा, झंझट इतना कम हो जाएगा कि भीतर का आराम आपको बहुत बलिष्ठ बना देगा। प्रयोग करके देखो, इस सत्य को स्वीकार करके जीवन में से शरीर का महत्व निकाल दो, वस्तुओं का महत्व निकाल दो। ये सब महत्व की बातें नहीं है। अपने दोषों को मिटाने के लिए शरीर और संसार की वस्तुओं का सेवा में सदुपयोग करने का दायित्व तो अपने पर आ गया है। अगर हमने शरीर और संसार को महत्व न दिया होता तो यह भी दायित्व तो अपने पर नहीं आता। अपने सामने दायित्व तो आ गया है कि संग्रह की हुई संपत्ति को निर्धनों की सेवा में लगाना जरूरी हो गया। धन के लोभ और संग्रह की बीमारी को मिटाने के लिए यह इलाज सामने आ गया। अगर मुझ में आसक्ति नहीं होती तो मेरे सामने सेवा की परिस्थिति भी नहीं आती, हम पहले ही उसके पार होते। श्री महाराज जी कहते हैं कि जल्दी जल्दी बहती गंगा में हाथ धोकर शुद्ध हो जाओ। धन आवे तो आदर करके स्वागत करके ले लो। धन संपत्ति चीज सामान जो परमात्मा ने पैदा की है वह बुरी नहीं है। आवे तो आदर करके ले लो, लेकिन अपने लिए रखने की मत सोचना, नहीं तो फंस जाओगे। जिसके लिए है उसको देते जाओ, खुले हाथ से देते जाओ, बीमारी का इलाज हो जाएगा, निर्लोभ हो जाओगे। दुनिया से जाने से पहले शरीर और संसार तुम्हारे भीतर से निकल जाएगा, बहुत आराम मिलेगा। धन के ज्यादा और कम का अंतर नहीं होता है, कोई 5 रुपए में भी फंस जाता है, कोई 5 अरब में भी नहीं फंसता है। कम ज्यादा की बात नहीं है, बात फंसावट की है। किसी समय मेरे ध्यान में आया कि दुनिया में अपना कहलाने लायक कोई दिखता नहीं है। महाराज जी से मैंने आकर कहा कि महाराज जी, इस संसार में कोई अपना कहने के लायक दिखता नहीं है, और बिना किसी को अपना बनाए मुझसे रहा नहीं जाता है, तो क्या करूं? श्री महाराज जी ने कहा, देवकी जी, एक तो है मेरा मित्र जो सदा सदा के लिए तुम्हारा होकर रहता है। लाली, तुम भूल गई हो उसको। अगर तुम पसंद करो तो मैं उससे सगाई करा दूं। मैंने कहा, हाँ महाराज, कराइए। बिना लगन के कौन रह सकता है? अपने प्रेम का आधार अवश्य चाहिए। अतः जब मैंने हाँ किया तो कठिन प्रश्न सामने आ गया। महाराज जी कहने लगे कि लाली, एक काम करना पड़ेगा। झोली में जो तुमने भरकर रखा है, डिग्री का अभिमान, धन का अभिमान, कुटुंबी जनों का सहारा और सच्चरित्र व्यक्तित्व और कर्तव्यनिष्ठ होने का अभिमान, जितना तुमने झोली में भरकर रखा है सब पहले झाड़ दो। पहले झोली को खाली कर दो, तब मैं सगाई की बात करूं। संत के कहने से मैंने मान लिया हो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन मेरे भीतर का प्रश्न इतना उग्र था कि संत को करुणा आ गई, भगवंत को करुणा आ गई, और दोनों ने मुझको संभाल दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। यह उदाहरण है किस बात का? इस बात का कि या तो तुम अपने अनुभव के आधार पर असत को अस्वीकार करके अकेले हो जाओ, तब तुम्हारे भीतर वह आनंद प्रकट हो जाएगा, अथवा तुम्हारे पास जो कुछ है वह सब विश्वास करके उस परमात्मा के समर्पित कर दो और उसको अपना मान लो, उसी को जीवन का आधार बना लो, तो उसका परम प्रेममय रस जो है वह तुम्हारे भीतर ही प्रकट होकर सारी थकान मिटा देगा, सब विकारों को धो देगा। जन्म जन्मांतर से जो अहम का एक आभास अपने पर लगा रहता है उसको भी मिटा देगा, और सब प्रकार से भव रोगों से मुक्त करके अपने प्रेममय रस से तुमको भरपूर कर देगा। यह जीवन का एक क्रम है, एक मेथड है। गुरु की वाणी में विश्वास कर लो, वेद वाणी में विश्वास कर लो, गीता रामायण के वाक्यों में विश्वास कर लो, संतों भक्तों के वाक्यों में विश्वास कर लो। बिना विश्वास किए उस सत्य की स्वीकृति अपने को प्रभावित नहीं करती है। विश्वास करना जरूरी हो गया, क्योंकि जीवन की आवश्यकता बताती है कि बिना किसी अविनाशी आधार के, बिना प्रेम के, बिना सगाई के, बिना लगन के जीवन कोई जीवन ही नहीं मालूम होता है। संसार में अपना कहने लायक कुछ है नहीं, और जो अपने लायक है वह ऐसा विलक्षण है कि लौकिक कल्याण भी करा सकता है, पारलौकिक कल्याण भी करा सकता है। अपना ही रस देकर हमको रसमय बना सकता है, वह सेवक हो सकता है, स्वामी हो सकता है, पुत्र हो सकता है, पिता हो सकता है, गुरु हो सकता है और शिष्य भी हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मोहि तोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। हमारी ओर से जो संबंध उनके प्रति पसंद किया जाता है, वह उनको इतना प्रिय है कि वे सब स्वीकार कर लेते हैं, सब प्रकार से भरपूर कर सकते हैं। संसार की नश्वरता का परिचय एवं अविनाशी के प्रेम की प्यास, ये दोनों ही बातें मनुष्य के जीवन में हैं। सत्संग में आने से आप में ये बातें पैदा नहीं हुई, पहले से ही थी। संतुष्टि के बिना असंतोष का भार ढोना किसी भी सजग व्यक्ति को पसंद नहीं है। यह बात मेरे कहने से मालूम हुई कि पहले से आप जानते हैं। मैं मन ही मन सोचती हूं कि प्रभु ने कितनी कृपा की है तुम पर, प्रतिकूलता के रूप में दर्शन दिया है। तुम्हें तो जल्दी से जल्दी साधना में लग जाना चाहिए। अनुकूलता में तो आदमी थोड़ा शिथिल भी हो जाता है, प्रतिकूलता में और जोरदार चेतना जग जाती है। तो साधना के प्रतिकूल संसार बन जाए, यह संभव नहीं है। साधना के लिए कोई परिस्थिति है ही नहीं। इस बात को सदा के लिए भूल ही जाओ, निकाल ही दो जीवन में से। देखो, संसार कभी साधना के लिए बाधक नहीं हो सकता। प्रतिकूलता कभी आपको परमात्मा से दूर नहीं कर सकती। किसी संत के मुख से मैंने सुना है कि बच्चे को गोद में लेना हो, दूध पिलाना हो, उसके भोजन का समय हो गया हो और वह खिलौनों में खूब उलझा हुआ हो, मस्त हो, तो करुणामयी माँ क्या करती है, आ करके जल्दी जल्दी उसके सामने के खिलौनों को हटा देती है। तब वह रोता है, चिल्लाता है और माँ बच्चे को उठा लेती है। ऐसे ही बहुत बार हमारे परम हित चिंतक, हमारे आपके परम हितैषी हमको अनुकूलता के सुख में फंसा हुआ देखकर अनुकूलता के सब खेल तमाशे एक सेकंड में बिगाड़ कर रख देते हैं। मैं क्या बताऊं, जितना ही मैं सृष्टिकर्ता से नाराज थी उतना ही उन्होंने मुझे अपना प्रशंसक बनाया। मेरी हार हो गई, उनकी जीत हो गई। मेरी शिकायतें खत्म हो गईं। जैसे जैसे जीवन का सत्य प्रकाशित होता चला जाता है, आंखों के सामने से अंधकार का पर्दा हटता चला जाता है, उतना ही अधिक उनकी महिमा, उनकी करुणा से मेरा जीवन अभिभूत होता जाता है। मैं सोचती हूं कितनी कृपा है तुम्हारी कितना रस है तुम्हारे में, कितना हित चिंतन है मेरे लिए, बड़ा बढ़िया जीवन है। आप मानव जीवन की इस महिमा को स्वीकार कर ही लीजिए कि जीवन दाता ने हम लोगों को अनंत आनंद और परम प्रेम के लिए परिस्थितियों पर आश्रित नहीं किया है। मान ही लो इस बात को, और अगर किसी को संदेह लगे तो आइए बैठकर विचार विमर्श कर लें। संदेह है नहीं, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि असाधन काल में जो हमारी दशा रहती है वह भूल का परिणाम है। सत्संग के प्रकाश में इस भ्रम का निवारण हो जाता है। आप देखिए असाधन काल में क्या था कि नित्य विद्यमान परमात्मा अपने से बहुत दूर मालूम होता था, और जिसका स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है वह संसार अपने निकट मालूम होता था। उस भ्रम के निवारण के बाद अब क्या हो गया कि नाशवान का प्रभाव अपने पर से उतर गया और नित्य विद्यमान परमात्मा की विद्यमानता अपने अनुभव में आ गई। उनके प्रेम का रस जीवन में प्रवाहित हो गया तो यह मानव जीवन की सफलता है। अब शांत।